very great pleasure and fortune to be with all of you this evening in this holy city of Kashi.
यह हमारा सौभाग्य और बहुत आनंद की अवसर है कि आप सबके बीच में इस बनारस के पवित्र शहर में आए.
For me, it is a special day.
मेरे लिए एक बहुत विशेष दिन है.
Because it is the first time I have returned to the city of Kashi. 23 years.
ये मेरे वो 23 साल के बाद आज मैं शहर में वापस आया हूँ.
25 years ago I first came to Kashi.
25 साल पहले मैं काशी के शहर में आया था.
I came from the affluent country of the United States of America.
मैं अमेरिका का जो बहुत ही आर्थिक रूप से बहुत प्रसिद्ध शहर है वहाँ से आया.
Seeking real wealth.
संपत्ति की खोज में यहाँ आया था.
The wealth of material acquisition cannot satisfy the heart of anyone.
भौतिक संपत्ति जो है वो किसी के हृदय को संतुष्ट नहीं कर सकती.
I saw all around me in this nation so much money, so much technology, so much comforts and luxuries, but so much depression, anxiety, and emptiness.
मैंने जो अमेरिका के देश में देखा कितने आर्थिक रूप से बहुत जो है आगे बढ़े हुए हैं, तकनीकी रूप से बहुत आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग बहुत दुखी हैं और चिंतित हैं.
Like rice, like the husk of rice without any rice inside, it appears very nice, but it's hollow.
चावल का छिलका होता है, चावल निकाल दो बाकी दूसरा बचता है, तो दिखने में दिखाई पड़ता लेकिन अंदर कुछ नहीं.
Any materialistic society, however successful it may be, without spiritual fulfillment, can only be a society of emptiness and utter waste of human life.
कोई भी भौतिक जीवन हो चाहे भौतिक रूप से कितना भी समृद्ध क्यों ना हो, बिना आध्यात्मिक जीवन के वो बिल्कुल खाली और बेकार हो जाता है.
So I quite willingly left behind all the materialist opportunities that were presented to me.
और जो भी भौतिक अवसर मुझे मिले थे उन सबको मैं छोड़कर अपनी इच्छा से यहाँ पर आया.
To seek spiritual realization.
आध्यात्मिक साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए यहाँ आया.
By the grace of the Lord, I studied many of the great religions of the world through Europe, the Middle East, and I came to India.
भगवान की कृपा से मैंने बहुत ही जो है धर्म का अध्ययन किया, जैसे यूरोप में होते हुए और जो मिडिल ईस्ट कंट्री है देश है वहाँ से.
For about a year I lived in the Himalayas.
और एक साल मैं हिमालय में रहा.
And then I came down to this great city of Kashi.
और फिर मैं वहाँ से इस काशी के महान शहर में आया.
That was in 1970.
वो 1970 की घटना है.
The Manikarnika Ghat, I would sit from sunrise and sunset watching bodies burn.
और जो मणिकर्णिका घाट है वहाँ पर मैं सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक बैठा रहता था और इस शमशान घाट पर शरीर को जलते हुए देखता रहता.
I saw people throughout my life spending so much of their time and energy decorating their bodies. I wanted to see what is really the culmination of these human bodies.
मैंने कई लोगों को देखा था कि सुबह से शाम तक अपना पूरा जीवन शरीर को सजाने में लगा देते हैं, तो मैं ये भी देखना चाहता था कि इस शरीर का अंत क्या होता
है. I would sit and watch how each body would burn and how everybody around that burning body would weep and cry in great sorrow.
मैं देखता था कि कैसे हर एक शरीर जल रहा है और उसके आसपास के सब लोग जो हैं वो दुख के मारे रो रहे हैं.
Then they would take whoever was left behind would just sweep the ashes in the river Ganges.
और जो वहाँ पे बचा होता था वो तो राख हो जाता था और राख को गंगा जी में बहा देते.
That is the destination of everybody.
और वो हर एक का इसी तरह से होता है.
In the West they bury the body in the ground and it is eaten by worms and turns to dust.
पाश्चात्य देश में जो शरीर को दफनाया जाता है और वो भी कीड़ों द्वारा खाया जाता है और वो भी खत्म हो जाता है.
Some communities feed their bodies, their dead bodies, to the birds, and they are digested. And their ultimate goal is to become the stool of the birds. But here, this body, just think, from the time we're born, we're just thinking, what can I give this body to give enjoyment? And this most rare and precious human life, which is meant specifically for self-realization, we utilize it simply to give pleasure to this body and to give pleasure to the bodies of the people we love. Thinking that this is the goal and purpose of life. This human life is so rare because it affords us the opportunity to understand the eternal nature of our soul in relationship with God. This human life is meant to be liberated from the cycle of birth, old age, disease, and death. Although we have this most precious and rare fortune out of 8,400,000 species, to come to this human life is the greatest gift. But yet we waste it. Eating, sleeping, mating, defending, and making so many grand arrangements for these four animalistic purposes.
खाने में सोने में मैथुन करने में और अपनी रक्षा करने में और इन चार चीजों के लिए अलग अलग जो इंतजाम करने में ही अपना पूरा जीवन जो है बर्बाद कर देते हैं.
And ultimately, what is the culmination of all of your tremendous efforts to give fulfillment to this body? Is it's put on the burning pyre.
और सब आपके सारे प्रयास हैं जो शरीर को आनंद देने के लिए उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है कि वो जो है शमशान घाट में जला दिया जाता है.
So I became very scientific in my analysis of how bodies would burn. If we had more time, I can explain systematically, moment by moment, what takes place on the funeral pyre. The hair sizzles, the skin shrivels, then the limbs start falling off one by one. Gradually, everything starts evaporating, all the blood, all the mucus, bile, air, water. And soon, it is nothing but ashes. Anyways, by the grace of Sri Krishna, many wonderful realizations came into my life here at Varanasi.
Bhagwan Shri Krishna kripa se yahan par bahut hi adbhut sakshatkar mujhe yahan par prapt hue Banaras ke shehar mein.
But realizations only bear fruit when we come in contact with a genuine spiritual master who can guide us in the path of perfection.
लेकिन इन सब का जो सच्चा फल तभी प्राप्त होता है जब हमें सद्गुरु से भेंट होती है जो कि हमें पूर्णता के मार्ग की ओर मार्ग निर्देशित कर सकता है.
It was in Vrindavan that I surrendered at the lotus feet of my eternal father and Guru Maharaj, His divine grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
ये वृंदावन में था कि मैं अपने परम पूज्य गुरु महाराज A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada के चरणों में मैंने समर्पण किया.
Who taught everything in such a wonderful systematic way of how we can perfect our lives.
उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे समझाया कि किस तरह से मैं जीवन की सफलता को प्राप्त कर सकता हूं.
Srila Prabhupada is a descendant in the line of the Yuga Avatar, the Supreme Lord Krishna who appears in this age of Kali as Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Srila Prabhupada jo hai parampara mein aa rahe hain jo ki bhagwan ke hi avatar hain Chaitanya Mahaprabhu unki parampara mein Srila Prabhupada ji aa rahe hain.
He taught us the life and teachings of Lord Chaitanya.
उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु के जीवन और उनकी शिक्षा के बारे में सिखाया.
And this visit to Varanasi is something so much more wonderful than ever before, because here we could remember the beautiful pastimes that Lord Chaitanya performed in this holy city.
और ये जो इस बार की जो मेरी यात्रा है काशी की वो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि इस बार मैं भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के सुंदर लीलाओं का स्मरण कर सकता हूँ.
I'd like to share some of these wonderful stories with you tonight.
और उसमें से जो सुंदर लीलाएं हैं वो मैं आप लोगों को आज सुनाना चाहूंगा.
Of course we know in every sampradaya Kashi is one of the central places of worship.
हम तो जानते हैं कि हर एक संप्रदाय में काशी को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है.
In Shankaracharya sampradaya, Shripad Shankaracharya consider this one of the holiest of all holy places of worship.
Shankaracharya ke sampradaya mein bhi Shankaracharya ne mana hai ki ye bahut hi pavitra sthan hai.
In the Sri Sampradaya, Ramanujacharya also came here and performed many, many merciful, wonderful activities.
Aur Sri Sampradaya mein Ramanujacharya bhi yahan par aaye aur kai unhone dayapurna karya yahan par kiye.
Madhvacharya also came to this place and worshipped.
Madhvacharya bhi yahan par aaye aur unhone bhi aaradhana ki.
Lord Sri Ramchandra, he also came to this holy city and worshipped.
Bhagwan Sri Ramchandra ji bhi yahan par aaye aur unhone bhi aaradhana ki.
There's beautiful stories of how Krishna had wonderful pastimes with the king of Kashi.
Aur ye bhi kahani hai kaise bhagwan Krishna ne ya Kashi raj ke sath jo hai ladai ki thi.
In fact Krishna burned this whole city down. Anything Krishna does to any place, it becomes worshipable. Of course, in the Ramanandi Sampradaya, Tulsidas, the Ramcharitmanas, was very much, this is an important place for his writing of that great epic.
और रामानंद संप्रदाय की दृष्टि से तुलसीदास जी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये स्थान रामचरितमानस का यहाँ पर लिखा.
So from every point of view, from all of the great lines of saintly persons of India, Varanasi is one of the holiest places.
तो हर एक दृष्टि देखना जाए तो बनारस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शहर.
I would like to share with you some of the stories of Lord Chaitanya's visit here.
चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर आए थे उनकी लीला के प्रसंग आज मैं कुछ आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करना चाहूँगा.
It begins when Lord Chaitanya was very young. He was living in Navadweep, which is now in West Bengal, and he was at that time performing the pastime of being a great scholar.
इसकी शुरुआत तब होती है जब चैतन्य महाप्रभु बहुत नौजवान थे, नवद्वीप में रहते थे जो कि बंगाल में है, और उस समय वो एक विद्वान थे.
One day he told his mother, Sachi Devi, and his young wife, Lakshmi Devi, that I'm going to East Bengal to teach.
एक बार उन्होंने अपनी माता सची देवी और अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहा कि मैं ईस्ट बंगाल में पूर्व बंगाल में जा रहा हूँ सिखाने के लिए, शिक्षण देने.
I will return very soon.
मैं बहुत जल्दी वापस लौट कर आऊँगा.
So he went to East Bengal, and there upon seeing the beautiful, beautiful Padmavati River, he took his bath with all of his students and enjoyed great pleasure.
वहाँ अपने छात्रों के साथ उन्होंने पद्मावती नदी में स्नान किया और बड़ा आनंद अनुभव किया.
He was the greatest scholar in all the world.
पूरे विश्व में सबसे बड़े विद्वान थे.
Thousands and thousands of people came to learn under him.
हजारों लोग उनसे शिक्षण ग्रहण करने के लिए आ रहे थे.
After spending some months, when he was about to leave, all of his friends and students and well-wishers came to offer their goodbye to him.
और जब कई समय बाद जब सब शिक्षण पूरा हुआ तो सब विद्यार्थी उनको नमस्कार करके उनसे विदा लेने के लिए आए.
At that time there was a great Brahmin.
उस समय एक बड़े जो है अच्छे ब्राह्मण.
His name was Tapan Mishra.
उनका नाम था तपन मिश्रा.
This Tapan Mishra, he had studied all of the scriptures.
उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया.
And he had gone to so many great, great saintly persons.
और कई संतों के पास हो गए थे.
He had a burning desire in his heart to understand what is the highest process for the perfection of life And what is the supreme object of worship in life?
वो जानना चाहते थे कि जीवन की सफलता प्राप्त करने के लिए तरीका क्या है और सबसे ऊंचा ध्येय क्या है.
But no one could answer his question.
लेकिन कोई भी उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहा था.
So he was very dissatisfied.
अतः वो बहुत ही असंतुष्ट थे.
Day and night he would weep and he would pray for the answers to his questions.
दिन रात रोते रहते थे अपने प्रश्नों का जवाब प्राप्त करने के लिए.
And he would constantly chant the names of Krishna.
और वो हमेशा कृष्ण का नाम लेते रहते.
One night a very divine personality appeared to him in a dream.
एक दिन सपना में एक बहुत ही दिव्य व्यक्ति उनके सामने प्रकट हुए.
And told him that the supreme lord Sri Krishna, the summum bonum of all the truths of the Vedas, has appeared as this beautiful scholar Lord Chaitanya Nimai, and you should meet him tomorrow on the banks of the Saraswati and surrender to his lotus feet because he can explain all truths to you.
उन्होंने बताया कि जो परम सत्य है जो भगवान श्री कृष्ण है वो ये बालक निमाय के रूप में प्रकट हुए हैं वो परम सत्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं तुम्हें उससे मिलना चाहिए और वो तुम्हारे सारे प्रश्नों का हल कर देंगे.
I am revealing to you that he is the supreme absolute truth, but do not tell this to anyone.
मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वे परम सत्य हैं परंतु यह बात किसी और से मत बताना.
So the next day Tapan Mishra came to Lord Chaitanya on the banks of Padmavati. Just as he was about to leave East Bengal, and he fell at his feet and clasped his feet and began to beg him, please be merciful to me.
तो वो जो है दूसरे दिन जो है चैतन्य महाप्रभु जब पद्मावती नदी में स्नान करके जा ही रहे थे तब उनके चरण कमलों में गिर पड़े और उनके चरण कमलों में को पकड़ कर वो उनसे प्रार्थना करने लगे.
I have been searching through the Vedas and going to so many saintly persons, but I have not found the answer. What is the supreme process for perfection and who is the most worshipable object?
बोले हैं कि हमने वेदों में बहुत अध्ययन किया ये प्रश्नों का जवाब प्राप्त करने के लिए लेकिन अभी तक मुझे कोई प्रश्न का जवाब नहीं मिला कि सबसे जो है जो अच्छा तरीका क्या है और सबसे जो पूजनीय वस्तु या व्यक्ति कौन है.
And Lord Chaitanya replied that it is Krishna who is the supreme object of worship.
चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि आराधनीय जो व्यक्ति हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं.
Ultimately, all the Vedas only lead to love and devotion to Him.
और जो सारे वेद जो हैं, उनके प्रति प्रेम और भक्ति की ओर ले जाते हैं.
And the only means of approaching Krishna is through devotion, through bhakti.
और सिर्फ भक्ति के द्वारा ही कृष्ण को हम प्राप्त कर सकते हैं.
And the way of performing bhakti in this age is to very sincerely chant the holy names of Krishna.
और भक्ति भक्ति को जो है प्राप्त करने का तरीका ये है कि बड़े सच्चे दिल से भगवान का नाम कीर्तन करना.
This
महामंत्र
Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
नामक एक सन्यासी है.
His bodily features are so beautiful.
और उनके शरीर के जो अंग हैं वो बहुत ही सुंदर हैं.
He has a beautiful golden complexion and long, long arms.
उनके जो बहुत सुवर्ण वर्ण है और लंबी भुजाएं हैं.
And when he dances, it is so full of beauty that it captivates the heart of all who see him.
और जब वो नृत्य करते हैं तो इतना सुंदर है कि सबके हृदय को वो जीत लेता है.
And when he chants the holy names, he becomes so filled with ecstatic love.
और जब वो भगवान का नाम कीर्तन करते हैं तो वो कितने प्रेम से विहल हो जाते हैं.
That anyone who hears him or sees him becomes a pure lover of Krishna.
जो भी उनको देखता है या सुनता है वो भगवान का सच्चा प्रेमी बन जाता है.
Prakashananda replied, "Yes, I have heard about this."
प्रकाशानंद सरस्वती ने बताया कि हाँ मैंने इसके बारे में सुना है.
This sentimentalist from Bengal.
ये भावुक व्यक्ति है बंगाल से आया है.
Although he is for the Bharati Sanyas Sampradaya, he does not study Vedanta like the rest of us.
हालांकि वो भारतीय संप्रदाय से है वो हम सब की तरह वेदांत का अध्ययन नहीं करता.
He is a cheap sentimentalist.
वो तो बहुत ही एक सस्ते तरीके का जो है भावुक व्यक्ति.
He is a first class magician.
वो तो एक प्रथम श्रेणी का जादूगर है.
He has some mystic power to hypnotize foolish people into believing he's God.
उसके पास कोई योगिक शक्ति है जिसके द्वारा वो मूर्ख लोगों के जो मन को वश में कर लेता है और भगवान में विश्वास कराता है.
But in this great city of Kashi, such sentimentalism will never be accepted.
लेकिन इस काशी के इस महान शहर में जो है ऐसे भावुकता को कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा.
We do not care for him.
हम इसकी परवाह नहीं करते.
When the Maharashtrian Brahmin heard this, he immediately left and went to Lord Chaitanya and told him what Prakashananda said.
Maharashtra Brahman ye sunkar seedhe Chaitanya Mahaprabhu ke paas gaye aur unhe bataya ki kya keh rahe the.
Lord Chaitanya smiled.
Chaitanya Prabhu muskurane lage.
The Maharashtrian Brahmin said, he said the word Brahman and Atma and Chaitanya, but he could not say the word Krishna.
उन्होंने बताया कि वो ब्रह्म और आत्मा ये सब शब्द कह रहे थे लेकिन कृष्ण शब्द नहीं कह पा रहे थे.
Lord Chaitanya said, because he saw, because these types of people are so offensive to Krishna, always denying the eternality of his beautiful, pure, transcendental form, they cannot even properly say the name of Krishna.
उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्ति जो है वो कृष्ण के प्रति अपराध करते रहते हैं इसीलिए वो कृष्ण का नाम बोल भी नहीं पाते.
And then Lord Chaitanya began to explain, the perfection of life is to always remember Krishna through chanting his name.
Chaitanya Prabhu samjhane lage ki jeevan ki safalta isi mein hai ki Krishna ko smaran karna unke naam kirtan ke dwara.
Anyway, soon after this, Lord Chaitanya left Varanasi en route to Vrindavan.
Aur uske baad wo jaisa Banaras se phir jo hai wo chale gaye Vrindavan ki taraf.
And after spending approximately 2 months in Vrindavan, he came, and during the month of Magh, he went to Prayag.
और उसके बाद 2 महीने वृंदावन बिताने के बाद वो फिर प्रयाग लौट कर आए.
And there for 10 days at the Dashashwamedha Ghat, he instructed Srila Rupa Goswami.
और वहाँ पर 10 दिन तक श्री रूप गोस्वामी को उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर शिक्षा प्रदान की.
He also met the great Acharya Vallabhacharya.
और वहाँ से वो वल्लभाचार्य जी से भी उन्होंने भेंट की.
And then he started toward Varanasi.
और फिर वो वहाँ से वाराणसी की ओर बढ़ने लगे.
चंद्रशेखर that night had a dream.
उसी रात्रि को चंद्रशेखर को स्वप्न आया.
That Lord Chaitanya was coming to Varanasi to live in his home.
कि चैतन्य महाप्रभु जो वाराणसी आ रहे हैं उनके घर में निवास करने के लिए.
So he woke up early in the morning and went to the outskirts of the city. And there he saw the beautiful golden form of Gauranga dancing and chanting the holy names.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
वहाँ पर उन्होंने शहर के जो शुरुआत में देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो है उनका सुंदर रूप है और वो भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं.
And when he met Lord Chaitanya, he invited him to come to his home.
और चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद उन्होंने उनको अपने घर में आने के लिए आमंत्रित किया.
Lord Chaitanya stayed at the home of Tapan or Chandrashekhar, and each day he would take his prasad at the home of Tapan Mishra.
और वो चंद्रशेखर आचार्य के घर में ठहरे हुए थे और जो है तपन मिश्रा के घर में प्रसाद लेते.
Meanwhile, one of the great devotees of the Lord, whose name was Sanatan Goswami, he was the chief minister of the king of Bengal, whose name was then Nawab Hussain Shah.
और उस समय भगवान के एक महान भक्त सनातन गोस्वामी जो है राजा हुसैन शाह के दरबार में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करते थे.
He had such political power and so much incredible wealth. He had thousands of servants, beautiful palaces, beautiful gardens, so much prestige, but he was dissatisfied because he was associating with materialistic people and he could not worship Krishna to his heart's content.
Unke paas sab kuch tha, mahal tha, naukar chakar sab kuch the, lekin wo santusht nahi the kyunki wo bhautikvadi vyaktiyon ke sang mein the aur apni ichha anusar wo Krishna ki aaradhana nahi kar pa rahe.
Lord Chaitanya came to his capital of Ramakeli and told him he should leave and go to Vrindavan.
चैतन्य महाप्रभु जो है रामकेली में जो है आए और उन्होंने बताया कि उन्हें त्याग करना चाहिए इसका.
As he tried to leave, he was imprisoned.
जब वो छोड़ने का प्रयास कर रहे थे तो उनको जेल में डाल दिया गया.
But somehow or other, he bribed the jail keeper to release him from prison.
लेकिन उन्होंने जो है जो जेल के जो अध्यक्ष थे उनको रिश्वत देकर छुटकारा प्राप्त कर लिया.
And he was secretly traveling through the jungles to try to reach Vrindavan.
और वो जंगल के मार्ग से निकलते हुए वृंदावन की ओर आगे बढ़ रहे थे.
On the way, he came to a place called Hajipur.
वहाँ से रास्ते में वो हाजीपुर नाम के स्थान पर पहुँचे.
And there, he met his sister's husband, whose name was Shrikanta.
और वहाँ पर जो है अपने बहन के पति जिनका नाम श्रीकांत था उससे की भेंट हुई.
He was a very wealthy man.
वो बहुत अमीर व्यक्ति थे.
And Sanatan, he looked so, he just came out of jail. He had beard and long hair and all dirty clothes and everything.
और वो तो सनातन अभी भी जेल से बाहर निकले थे, बहुत गंदे कपड़े थे और दाढ़ी वगैरह बड़ी हुई थी, लंबे बाल थे.
So Shrikanta said, "Why don't you stay and I will give you all nice new clothes and everything else."
तो श्रीकांत ने जैन से कहा, तुम यहीं पर रहो मेरे साथ, मैं तुमको अच्छे वस्त्र वगैरह सब कुछ दे दूंगा जो भी चाहिए.
And Sanatan said, "I will not even stay here for 1 minute." He was determined to go to
Vrindavan.
But Shrikanta, as he was leaving, gave him a very beautiful, beautiful blanket to keep warm. Then Lord Chaitanya came to Varanasi. Sanatan Goswami came to Varanasi. And he heard that Sri Chaitanya Mahaprabhu was at the house of Chandrasekhar.
और उन्होंने सुना कि चैतन्य महाप्रभु जो है चंद्रशेखर के घर पर हैं.
So he went to the house and sat right at the door.
वो वहाँ पर पहुँचे और दरवाजे के पास बैठे रहे.
And Lord Chaitanya told Chandrasekhar that I think a great saint, a very great Vaishnav devotee, is outside waiting to see me.
और चैतन्य महाप्रभु ने चंद्रशेखर को बताया कि देखो ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही बड़े वैष्णव जो है बाहर बैठे हैं, मुझे मिलना चाहते हैं.
And Chandrasekhar looked outside and looked everywhere, and he came back in. He said, "There's no great saints out there."
Chandrasekhar जब बाहर आकर देखे और बोले कि कोई कोई महान संत नहीं है, उन्होंने सब जगह देखकर कहा.
Lord Chaitanya said, "Is there anyone out there?"
Chaitanya ने कहा, क्या कोई भी, कम से कम एक कोई व्यक्ति है क्या?
He said, "There's one Muslim mendicant sitting there."
बोले वहाँ पर एक मुस्लिम जो भिक्षुक है वो वहाँ पर है.
Lord Chaitanya said, "Bring him in."
Chaitanya प्रभु बोले कि इनको अंदर लेकर आइए.
So Chandrasekhar said, "Oh, mendicant, please come in."
Chandrasekhar ने भिक्षुक से कहा कि आप कृपया अंदर आइए.
And when he entered into the courtyard, Sri Chaitanya Mahaprabhu came, and when he saw him, he immediately embraced Sanatan Goswami.
और चैतन्य महाप्रभु जो है तुरंत बाहर आकर चैतन्य गोस्वामी को गले मिल लिए.
And as they embraced, they both fell into ecstatic love, and incessant tears were flowing from their eyes.
और जैसे वो मिले, उनके आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा.
Chandrasekhar was astonished.
चंद्रशेखर को बहुत आश्चर्य हुआ.
Lord Chaitanya, the Supreme Personality of Godhead, was told by Sanatan, "Please do not touch me. I am very low and contaminated person."
Sanatan Goswami कहने लगे, मैं बहुत नीच हूँ, कलमशित हूँ, इसलिए मेरे को स्पर्श मत करिए.
Lord Chaitanya said, "I am touching you for my own purification."
चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं अपने शुद्धिकरण के लिए आपको गले मिल रहा हूँ.
Sages say, great sadhus like you are like holy places personified.
आप ऐसे साधु जो है वो मूर्तिमान तीर्थ स्वरूप होते हैं.
Just by seeing you, what to speak of touching you, can purify anyone's life.
आपको सिर्फ देखने से ही, स्पर्श करने की तो बात छोड़ो, उससे ही व्यक्ति का शुद्धिकरण हो जाता है.
Then Lord Chaitanya told Chandrasekhar that he has beard and long hairs. You should make him nice shaved up.
और चैतन्य महाप्रभु ने चंद्रशेखर को कहा कि इनके बहुत दाढ़ी है, लंबे बाल हैं, इनको थोड़ा तुम सब साफ कर दो.
He did not want him to be Daravesh.
उनको दारावेश नहीं बनाना चाहते थे.
Which our Guru Maharaj said was hippie.
हमारे गुरु महाराज को हिप्पी कहकर संबोधित करते
हैं. So Sanatan Goswami had his head and his face shaved very nicely.
सनातन गोस्वामी ने इस तरह से उनके अपने बाल और अपने जो दाढ़ी है उसका अच्छे से मुंडन कर दिया.
And Chandrasekhar said, "Let me give you nice new clothes."
चंद्रशेखर ने कहा कि मैं तुम्हें नए वस्त्र प्रदान करना चाहता हूँ.
And Sanatan said, "I will not accept new clothes. You give me old clothes."
Sanatan Goswami ने कहा, मुझे नए वस्त्र नहीं चाहिए, मुझे पुराने वस्त्र दीजिए.
That you no longer use.
जो ऐसे वस्त्र जिसका आप अभी उपयोग न कर रहे हैं.
And he gave him old clothes, and then Sanatan took one piece of cloth and tore it into two pieces, and then another some pieces to be an upper garment and lower garment and his underwears.
और इस तरह से जो है उन्होंने एक ही वस्त्र लेकर दो टुकड़े कर दिया, फिर और टुकड़े करके कॉपिन और नीचे जो है सब कुछ पहन लिया.
And then he came before Lord Chaitanya. And Lord Chaitanya was very pleased to see the simplicity and the devotion of Sanatan.
चैतन्य महाप्रभु जो है उनकी सरलता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए.
The Maharashtrian Brahmin invited Sanatan, "Please take prasad with me."
महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने कहा कि आज हमारे यहाँ पर आप प्रसाद ग्रहण करिए.
But Sanatan said, "No, I will beg door to door."
सनातन गोस्वामी ने कहा, नहीं, मैं दर दर पर भिक्षा मांगूंगा.
So he began to perform this madhukari here in Varanasi.
वो वाराणसी में यहाँ पर मधुकरी करने लगे.
But one day, he noticed that Lord Chaitanya was glancing again and again at his new blanket.
एक दिन उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु जो है उनकी दृष्टि उनके कंबल पर ही लगी हुई थी.
So he was thinking that my Lord does not like this new blanket.
उनको लगा कि ये नया कंबल इनको पसंद नहीं है.
So he went to the bathing ghat. I believe it was the Dashashwamedha ghat.
तो वो दशाश्वमेध घाट पर गए.
And there he saw a Bengali mendicant with an old torn quilt who was just washing it and drying it.
उन्होंने देखा कि एक बंगाली भिक्षुक जो है वो कंबल को धो रहा था और सुखाने डाल रहा था.
And he said, "You see this nice new blanket? I will exchange it for your old torn quilt."
उन्होंने कहा, देखो ये नया कंबल जो है मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम पुराना कंबल मुझे दे दो.
And the mendicant said, "What do you want my torn quilt? Why you are making jokes with me?"
तो उन्होंने कहा कि तुम्हें इसकी क्या आवश्यकता है, तुम क्यों इस तरह से मेरे से मजाक कर रहे हो.
But Sanatan said, "No, no. I am very serious. I want to exchange."
Sanatan Goswami ने कहा, नहीं, मैं बहुत गंभीर हूँ. मैं जो है इसका आदान-प्रदान करना चाहता
हूँ. So Sanatan came back to Chandrasekhar's house, wearing with this torn quilt over his shoulder.
और इस तरह से जो है वो चंद्र गोस्वामी घर वापस आए. उन्होंने फटा हुआ कंबल पहना हुआ.
And Lord Chaitanya said, "Where is your beautiful blanket?"
चेतन आप उन्होंने पूछा कि वो सुंदर नया कंबल कहाँ पर है.
And Sanatan explained exactly what he had done.
और सनातन गोस्वामी ने सब समझाया कि उन्होंने क्या किया था.
And Lord Chaitanya was very happy.
चेतन महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए.
He said, "Now all of your attachments to this material world are finished."
उन्होंने बताया कि तुम्हारे सारे भौतिक आसक्ति जो है अभी नाश हो गए.
He said, "It how will it look to people that you're performing madhukari, begging from door to door, wearing such a beautiful blanket?"
लोगों को कैसा नजर आएगा कि अगर आप जो है बहुत सुंदर कंबल पहने हुए हैं और हाथ में भिक्षा मांग रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा.
Sanatan Goswami gave up all the great, great riches. He was living greater even than the king with such opulence to live such a simple life in devotion to the Lord.
Sanatan Goswami ये बड़े-बड़े ऐश्वर्य थे जो कि राजा के समान रह रहे थे, उन सबको त्याग दिया एक सरल जीवन बिताने के लिए भगवान की सेवा में.
Lord Chaitanya said that Krishna has shown his great mercy upon you.
इतना आप उन्होंने कहा कि कृष्ण ने आप पर विशेष कृपा दिखलाई है.
But Sanatan replied that I was in the most terrible association. But by your mercy, I have been liberated and been given your divine blessing.
सनातन गोस्वामी बताया कि मैं तो बहुत ही बुरे संग में था, लेकिन आपकी कृपा से जो मेरा उद्धार हो गया है.
One day, Sanatan Goswami here in Kashi, he put straw between his teeth, and with tears in his eyes, he fell and clasped the feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
एक दिन इसी काशी के शहर में जो सनातन गोस्वामी अपने दांतों के बीच में तृण रखते हुए चैतन्य महाप्रभु के चरणों को बड़े ध्यान से पकड़ कर बोलने लगे.
And with such a sincere and devoted heart, he began to appeal to the Lord.
एक बहुत ही सच्चे नम्र हृदय से जो है भगवान से प्रार्थना करने लगे.
Sanatan said that I am the lowest amongst men.
मैं सारे मनुष्यों में अधम हूँ.
I am the most sinful.
मैं सबसे बड़ा पापी हूँ.
I am fool number one.
मैं मूर्ख नंबर एक हूँ.
And I have been associating with the lowest materialistic people.
मैं जो नीच से नीच भौतिकवादी व्यक्ति हैं उनका संग करते आ रहा हूँ.
And yet people call me a great scholar.
लेकिन फिर भी लोग मेरे को बड़ा विद्वान मानते हैं.
And I am such a great fool that I believe them.
मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ कि उनकी बातों पर विश्वास कर लेता हूँ.
But I do not know who I am.
लेकिन मैं ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ.
And I do not know what is God.
और भगवान कौन है ये भी नहीं.
Nor do I know where I'm going or where I'm coming from.
मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ ये भी नहीं जानता.
I do not know what is the goal of life.
जीवन का ध्येय क्या ये मैं नहीं जानता.
Please instruct.
कृपया मेरे को शिक्षण दो.
And Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, on the banks of the holy Ganges here in Kashi. He explained, "Sanatan, you are such a great sadhu. But it is the nature of a sadhu, even if he knows everything, still he inquires humbly, just for purification and for the benefit of others."
सनातन गोस्वामी को जवाब देते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम एक साधु हो और साधु जो है उसका स्वभाव होता है कि सब जानते हुए भी शुद्धिकरण के लिए जो है वो इस तरह से प्रश्न पूछते हैं.
And Lord Chaitanya began to explain the basic principles of spiritual life.
और चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक जीवन के मूल सिद्धांत को समझाने लगे.
He explained that there are three energies of the Supreme Lord.
वो बताने लगे कि भगवान की तीन प्रकार की शक्तियाँ होती हैं.
There is the spiritual energy, there which is the chit shakti. There is the jiva shakti, or the atma, and there is the maya shakti, or this illusory energy.
मतलब ये तीन प्रकार की शक्ति है. एक तो अंतरंगा शक्ति है, और एक जीव शक्ति है, और एक माया शक्ति है.
The identity of every personality that lives is that he is the eternal soul.
हर एक व्यक्ति की पहचान ये है कि वो एक नित्य शाश्वत आत्मा है.
And this eternal soul has the choice to either be eternally liberated in the loving service of the Lord, or to be eternally conditioned in the service of illusion or maya.
और उसके पास ये चयन करने का अवसर है कि या तो भगवान की नित्य सेवा में लगे या वो माया की जो है सेवा में फंसा रहे.
In this world, people choose to serve this illusory energy.
इस दुनिया में लोग माया शक्ति की सेवा में रहना पसंद करते हैं.
Therefore, they come under the control of the three modes of material nature.
इसीलिए वो प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं.
Goodness, passion, and ignorance.
सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण.
And they are forced to act accordingly.
और उसके अनुसार उन्हें जबरदस्ती कार्य करना पड़ता है.
And their pure, unalloyed spiritual sentiments are completely covered by forgetfulness.
और उनका जो शुद्ध कृष्ण जो प्रेम है, वो इससे जो ढक लिया जाता है.
They identify only with their body and with the body of others.
वो शरीर से और दूसरे के शरीर से ही पहचान बनाते हैं.
And although everyone is seeking pleasure, they find so much pain and so much suffering in every aspect of their life.
और हालांकि वो आनंद की खोज में हैं, लेकिन वो बहुत दुख देखते हैं सब जगह पर, जीवन के हर पहलू में.
And they cannot avoid it.
उसको रोक नहीं सकते.
Because the soul is eternal, looking for eternal happiness.
ये आत्मा शाश्वत है और शाश्वत सुख की तलाश में है.
But this body and this material nature is temporary and subject to death.
लेकिन ये शरीर जो है वो क्षणभंगुर है और उसकी कभी ना कभी मृत्यु होने वाली है.
Therefore, the soul is always longing and seeking for freedom from this entanglement.
इसलिए आत्मा जो है हमेशा इस बंधन से मुक्त होने का प्रयास करती रहती है.
And the only means of delivering oneself to one's eternal constitutional position of being the loving servant of Krishna is through the process of bhakti.
और इससे मुक्ति प्राप्त करने का यही तरीका है कि भक्ति करना.
And all the scriptures deal with this subject.
और सब शास्त्रों में इसी विषय का वर्णन किया जाता है.
Sambandh gyan.
तो संबंध ज्ञान कहते हैं.
Which means to understand what our relationship is with God, that we are eternally the sole part and parcel of the supreme soul or Krishna.
ये समझने के लिए कि हम जो है भगवान के नित्य अंश हैं.
And through proper association of sadhus and proper activity to establish our relationship as an eternal servant of God.
और सच्चे साधुओं का संग करने से और सच्चे कार्य करने से हमारे संबंध को पुनः स्थापित करना.
In abhideya gyan, abhideya means to act according to that relationship by performing devotional service or bhakti.
Abhideya का मतलब है कि भक्ति के कार्यों के द्वारा उसके अनुसार कार्य करना.
And by this process only one can come to the perfection of life, which is prayojana or love of God.
और इसके द्वारा ही व्यक्ति जीवन के अंतिम लक्ष्य जो कि प्रयोजन है भगवत प्रेम इसको प्राप्त कर सकता है.
Lord Chaitanya explained to Sanatana Goswami a story.
Chaitanya Mahaprabhu ne Sanatana Goswami ko ek bahut sundar katha sunayi.
This was on the banks of the Ganges here in Kashi.
Ye Ganga ji ke tat par Kashi mein hi batayi gayi.
He explained that there was a very poor man.
Ek bahut hi gareeb vyakti tha.
And one day an astrologer came to him.
Ek baar jyotish unke paas aaya.
And this poor man said, "I'm so poor, where can I find wealth?"
Wo gareeb vyakti bola, "Main bahut gareeb hu, mujhe paisa kahan mil sakta hai?"
And the astrologer, whose name was Sarvagya, replied that your father has left you with a great, great, great treasure.
जो ज्योतिष है इसका नाम सर्वज्ञ था, बताने लगे कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए बहुत बहुत बड़ी संपत्ति रखी है.
But you have forgotten where it is.
लेकिन तुम यही भूल गए हो कि वो कहाँ पर है.
I have come to remind you.
मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूँ.
It is in your own yard.
वो आपके जो है आंगन में ही है.
If you dig in the ground in the southern side of your yard, there will be wasps and drones that will sting you.
अगर आप दक्षिण की ओर खोदोगे तो आपको जो है बहुत बड़े भंवरे और बहुत बड़े कीड़े होंगे जो आपको काटने लगेंगे.
You will suffer much pain and not find the treasure.
आपको बहुत दुख भोगना पड़ेगा और कुछ मिलेगा भी नहीं बदले.
If you go to the western side, there is a ghost.
पश्चिम की तरफ जाओगे तो एक बहुत बड़ा भूत है.
This ghost will create too much disturbance in your mind and you will not further find the treasure.
वो आपके मन में बहुत दुख पैदा करेगा और फिर आपको संपत्ति नहीं मिलेगी.
And if you go to the northern side, there is a big black snake that will eat you.
और उत्तर की ओर जाओगे एक बड़ा काला सांप है जो आपको खा जाएगा.
But if you go on the eastern side and just dig a little bit of dirt, you will find the great treasure there.
और पूरब की ओर जाओगे थोड़ा सा खोदोगे तुमको बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाएगी.
And then it was explained that the southern side represents the path of karma kanda.
Dakshin ka jo tarika hai wo karma kanda ka tarika batlaya jata hai.
The process of worshipping various demigods for material benefits.
Anek devtaon ki aradhana karna bhautik labh ke uddeshya se.
We're looking for treasure. through the benefits of greater prosperity in this world or even elevation to heavenly planets.
जो कि इस दुनिया में या स्वर्ग लोक तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं.
But Krishna says in Gita, Abhrama bhuvanaloka punaravartano arjuna mamupetitu kaunteya punarajanmana vidyate. From the highest planet in this world down to the lowest, they're all places of misery because they're all places of birth and death.
कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं कि सबसे ऊंचे ब्रह्मलोक से लेकर नीचे पातालोक सारे दुख के स्थान हैं क्योंकि सब जगह पर जन्म और मृत्यु है.
Therefore, by following religious principles for material benefits, karma kanda will get stung by the bees, the wasps and the drones of material miseries.
और ये भौतिक दुख के जो भवरे हैं, जो कीड़े हैं, उसके द्वारा हम काटे जाएंगे अगर हम दक्षिण ओर पर जाते हैं.
And the western side is the path of Gyanakand.
और जो पश्चिम का तरीका है वो ज्ञानकांड का मार्ग बताया जाता है.
Trying to find the treasure through mental speculation.
मानसिक तर्क वितर्क के द्वारा सत्य को प्राप्त करने का प्रयास कर.
But through all this mental speculation, the result is a ghost will come and just create so much disturbance and disruption in your own mind.
सफल होगा कि एक भूत ही तुम्हारे मन में प्रवेश करेगा और बहुत ज्यादा जो है दुख पैदा करेगा.
You know, that's what ghosts do.
आप जानते हैं भूत ये सब करते हैं.
They just create so much fear and annoyance and disturbance within your mind.
वो आपके मन में बहुत बड़ा डर पैदा कर देते हैं.
And the northern side is that process of mystic yoga of trying to merge into the supreme as the goal of life.
और ये उत्तर तरीका वो है कि भगवान में एक होने का प्रयास करना.
And it is like a black big serpent that bites you and poisons you and then devours you and you lose your own identity.
वो काले सांप की तरह है जो कि आपको खा जाता है और आपकी जो पहचान ही खत्म हो जाती है.
Through seeking the treasure through impersonal liberation, we lose our own spiritual identity.
क्योंकि निर्विशेष के द्वारा जो है अपनी पहचान को खो बैठते हैं.
And we cannot find the treasure of love of God.
हम भगवत प्रेम की संपत्ति को नहीं प्राप्त कर सकते.
But the eastern side is the path of bhakti.
जो पूर्व की दिशा है वो भक्ति का मार्ग है.
And there with just a small endeavor, we can find the supreme treasure of unlimited pure love.
और उसमें थोड़ा सा प्रयास करने से असीमित प्रेम की संपत्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं.
नित्य सिद्धा कृष्ण प्रेम सज्ज कबुनोय श्रावणादि सुधि चैति कुरिय युदोय. That within the heart of every living being is pure love of Krishna.
हर एक जीव के हृदय में शुद्ध कृष्ण प्रेम है.
By simply associating with great devotees of the Lord and chanting the holy names of the Lord, this love of Krishna is awakened within our heart.
सच्चे साधुओं का संग करने से और भगवान का नाम संकीर्तन करने से यह प्रेम पुनः जागृत हो सकता है.
And it is this treasure that everyone is longing to achieve.
और यही संपत्ति है जो कि हर एक व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है इस जीवन में.
For two consecutive months, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu instructed Srila Sanatana Goswami on the banks of the holy river Ganges here in Kashi.
दो महीने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को इस काशी के शहर में उपदेश दिया.
If we had many more hours, I would love to explain more of these instructions.
अगर हमारे पास बहुत सारे घंटे होते, समय होता, तो मैं ये सब समझाने की इच्छा रखता.
In such deep and profound detail, the Lord explained every aspect of life which is necessary for our spiritual purification.
बहुत ही ज्यादा जो है विवृत स्वरूप में आध्यात्मिक जीवन के जो भी आवश्यक है वो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को समझा.
In the end, he explained,
बिना किसी कीमत के भगवत प्रेम की संपत्ति.
Everywhere in the world, they are accepting this great gift of love of God, but here in Kashi, no one wants it.
हर एक जगह पर वो ये भगवान प्रेम की संपत्ति को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन काशी में कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं.
I have come with such a burden of gifts for these people, but if nobody takes it, then I will have to carry it all back with great difficulty.
मैं इतने बड़े भेंट का इतना बोझा लेकर आया हूँ, अगर कोई लेगा ही नहीं तो मुझे सब बड़े कठिनाई से फिर वापस ढो के ले जाना पड़ेगा.
Therefore, for these people, I will give it to them for nothing.
इसीलिए इन लोगों को मैं बिना कीमत के ही बांट दूंगा.
But still they would not accept.
लेकिन फिर भी वो नहीं स्वीकार करते.
So on this particular day, just as Tapan Mishra and Chandrasekhar were revealing their pained heart to see the difficulty of all these souls, the Maharashtrian Brahmin asked Lord Chaitanya, "Will you please take prasad at my house?"
और ऐसे जब ये बात हो रही थी तब महर्षि ब्राह्मण आए और बोले कि कृपया आप मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण करिए.
Lord Chaitanya would never intimately associate with offenders to God.
चेतना प्रभु कभी भी जो है जो भगवान के अपराधी थे ज्यादा घनिष्ठता पूर्वक संग नहीं करते
But the Maharashtrian Brahman invited Prakashananda and all of his sannyasi disciples to his house and Lord Chaitanya said yes I will come
महाराष्ट्र ब्राह्मण ने प्रकाशानंद सरस्वती उनके सारे शिष्यों को बुलाया और चैतन्य महाप्रभु ने भी यह स्वीकार किया
And Prakashananda was sitting on a very high raised platform
प्रकाशानंद सरस्वती एक ऊंचे आसन पर विराजमान थे
And Lord Chaitanya came and when he came into the house there was a place where everyone would wash their feet
और वो ऐसे स्थान पर जहां पर पाद को धोया जाता है वहां पर खड़े हुए
And Lord Chaitanya washed his feet And then he sat down in the place where everyone washed their feet.
और जहाँ पर सब लोग पैर धो रहे थे, वहीं पर चैतन्य महाप्रभु बैठ गए.
And as he sat, he began to emanate his Brahman effulgence, which was glaring like millions of suns.
और जैसे वो बैठे तो उनके शरीर से एकदम ब्रह्म ज्योति जैसे प्रकाश निकल रहा था हजारों सूर्य के समान.
But at the same time, it was so soothing and pleasing to the eyes to see.
लेकिन फिर भी वो आँखों को दिखने में बहुत ही ज़्यादा ठंडक देने वाला था.
Filled the whole room.
और वो पूरे कमरे को भर दिया.
And when Prakashananda saw the beauty of the Lord and His effulgence, he said, "Maharaj, please come and sit up with us. Why are you sitting in that dirty place?"
प्रकाशानंद सरस्वती ने जब देखा तो उन्होंने कहा, "महाराज, आप ऊपर आइए. आप इतने गंदे स्थान पर क्यों बैठे हैं? हमारे साथ बैठे हैं."
And Lord Chaitanya, he said, "You are such a great scholar and such a great sannyasi, and I am very low class. I do not deserve to sit on the same level as you."
चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि आप तो इतने महान हैं विद्वान हैं और मैं तो एक छोटा सा अधम सन्यासी हूँ मैं आपके साथ बैठने के लायक नहीं
Although he was the supreme lord, the master of all opulences, still he manifested the opulence of such humility that that humility melted the hearts even of these hard-hearted persons.
हालांकि वो स्वयं भगवान थे वो इतने नम्र थे कि उनकी नम्रता देखकर इतने ऐसे प्रकाशानंद सरस्वती जैसे व्यक्ति का भी हृदय पिघल गया
Lord Chaitanya taught In his Shikshastakam, a beautiful verse. Trinarapi sunichena tarorapi sahishnana amanina manadena kirtaniya sadahari. That one should be more humble than a blade of grass.
Chaitanya Mahaprabhu ne Shikshastakam mein sikhaya hai ki vyakti ko ghas ke tinke se zyada namra banna chahiye.
One should be more tolerant than a tree.
Ped se bhi zyada sahanshil banna chahiye.
One should be ready to offer all respect to others.
Dusron ko sab prakar ka maan samman dena chahiye.
And one should expect no respect for oneself.
Apne aap ke liye maan ki bilkul ichha hi nahi karni chahiye.
In this way one could chant the holy name of the Lord constantly.
Is tarah se wo hamesha vyakti bhagwan ka naam kirtan kar sakta
hai. So Lord Chaitanya embodied this verse perfectly.
Chaitanya Mahaprabhu isi shlok ke murtiman swarup the.
And Prakashananda, he got up and he took Lord Chaitanya by the hand and said, "Please come and sit with us."
Prakasham Saraswati unko haath se khinch kar apne saath bithaye.
And then he said to the Lord, "Why? You're such a great sannyasi. You are in our sampradaya. Why you are not sitting and studying Vedanta with us throughout the day? Why you are chanting and dancing like foolish women and children?"
वो चैतन्य प्रभु से बताने लगे कि आप हमारी तरह क्यों नहीं शास्त्रों का वेदांत का अध्ययन करते हो क्या आप स्त्रियों की तरह बच्चों की तरह हमेशा क्यों नाचते गाते रहते हो
And Lord Chaitanya replied that my guru told me that I was a great fool
चैतन्य प्रभु ने कहा कि मेरे गुरु ने बताया कि मैं एक बड़ा मूर्ख हूं
that I could never understand the imports of the scriptures
क्योंकि मैं शास्त्र के अर्थ को कभी समझ ही नहीं सकता
that I should simply chant these holy names
हमें तो मुझे तो सिर्फ भगवान का नाम कीर्तन ही करना चाहिए
हरे कृष्णा हरे कृष्णा Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
And as I was chanting, my limbs began to tremble and tears started pouring from my eyes. And I went to my guru and said, "What is happening? Am I going mad?"
और जब मैं गाने लगा तो मेरे आंखों से आने लगे, मेरा शरीर कांपने लगा. मैं गुरु महाराज के पास गया और पूछा, "क्या मैं पागल हो रहा हूँ? ये क्या हो रहा है मेरे को?"
And my guru Dev told me. That you have achieved the perfection of life of love of Krishna.
और गुरु महाराज ने बताया कि आपने जीवन की सफलता भगवत प्रेम को प्राप्त कर.
Now you go and you deliver this treasure of love of Krishna to everyone.
आप जाइए और ये कृष्ण प्रेम की संपत्ति सबको बांटिए.
Through the chanting of his holy name.
भगवान के नाम कीर्तन के द्वारा.
And then he began to explain the true meaning of the Vedanta Sutras.
और फिर वो वेदांत सूत्र का सही अर्थ समझाने लगे.
A wonderful and deep discussion took place.
और बहुत ही जो गहरा और बहुत सुंदर उनके बीच में वार्तालाप हुआ.
And he explained that the true essence of the Vedanta Sutra is unmotivated uninterrupted loving service to Shri Krishna.
मतलब चाहे बताया कि वेदांत सूत्र का सही अर्थ है कि बिना हेतु के बिना रुकावट के भगवान की भक्ति करना.
And he explained the real understanding of Shripad Shankaracharya.
और श्रीपाद शंकराचार्य का सही अर्थ जो है वो उन्होंने समझाया.
How he was actually an incarnation of Lord Shiva.
कि वो जो है भगवान शिवजी के ही अवतार थे.
And he himself, Bhaja Govindam, always worshipped Lord Sri Govinda.
वो स्वयं बताते हैं कि भजे गोविंद भगवान गोविंद की सेवा करी.
But for a particular purpose in this age of Kali, he concealed his natural devotional sentiments in most of his teachings and taught an impersonalistic conception of the absolute.
लेकिन एक विशेष कारण के वजह से उन्होंने जो है अपने जो है भक्ति भावना को छुपाकर ये निर्विशेषवाद का प्रचार किया.
But Lord Chaitanya explained the faults in those interpretations and the truer, higher understanding which he himself worshipped, which was bhakti.
चेतना आपने बताया कि इसमें क्या दोष है और हमने ये भी समझाया कि क्या उच्च सिद्धांत है जिसकी आराधना स्वयं शंकराचार्य करते थे और वो है भक्ति.
Upon hearing this discussion, Prakashananda and all of his 60,000 disciples surrendered at the feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
इसका चर्चा को सुनने के बाद प्रकाशानंद सरस्वती और उनके सारे 60,000 शिष्य चेतना महाप्रभु के चरणों की शरण में आ गए.
And Lord Chaitanya went back to the Pancha Ganga.
और फिर चेतना प्रभु वापस वो पंच गंगा घाट पर गए.
And he took his bath.
वहाँ पर स्नान किया उन्होंने.
And then he went to the temple of Bindu Madhava.
वहाँ बिंदु माधव मंदिर में गए.
And he began to dance and chant.
वहाँ पर गाने लगे और नाचने लगे.
And when people and hundreds and thousands of people, when they heard of Prakashananda's conversion, they all came there and began to dance and chant.
हजारों लाखों लोग जब उन्होंने सुना प्रकाशन सरस्वती का हृदय परिवर्तन हुआ तो वो सब भी जोर से गाने लगे.
And the Maharashtrian Brahmin came to Lord Chaitanya and told him that I was just at a meeting between Prakashananda and his disciples.
Maharashtri Brahmin ne bataya ki main Prakashananda Saraswati ke shishyon ke beech mein baitha tha.
And his chief disciple was explaining how Sri Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself.
और उनके जो मुख्य शिष्य हैं वो समझा रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं.
And his explanation of bhakti and the conclusions of the Vedanta Sutra are perfect.
और उनके भक्ति का समझाना है और वेदांत सूत्र का जो अंत है समझाना वो बिल्कुल पूर्ण है.
And Prakashananda himself confirmed.
और प्रकाशन सरस्वती ने भी इसकी पुष्टि की है.
So there in Varanasi, hundreds and thousands of people were chanting the holy names at the Bindu Madhava temple.
और यहाँ वाराणसी में जब बिंदु माधव मंदिर में हजारों लाखों लोग भगवान का नाम संकीर्तन.
And Lord Chaitanya came out of the temple with his beautiful golden form, leading everyone in the chanting of the holy names.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
और चैतन्य महाप्रभु जो है वहाँ पर आए, उन्होंने हजारों लोगों को इस तरह से नाम संकीर्तन प्रोत्साहन किया बिंदु माधव.
And there Prakashananda was waiting for him.
वहाँ पर प्रकाशानंद सरस्वती उनका इंतजार कर रहे थे.
And Prakashananda fell at the Lord's feet and surrendered to him.
प्रकाशानंद सरस्वती उनके चरणों में गिर गया और समर्पण कर दिया.
Right in front of all of the residents of Varanasi.
सारे वाराणसी के वासियों के सामने.
And Lord Chaitanya told Prakashananda that why you are doing like this?
चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?
You are such a senior sannyasi.
आप इतने वरिष्ठ सन्यासी.
I am only your lowly servant.
मैं तो आपका नीच अधम सेवक हूँ.
And Prakashananda said, "You are the supreme personality of God."
Prakashananda Saraswati बोले कि आप परम भगवान हैं.
I worship you.
मैं आपकी आराधना करता हूँ.
And then Prakashananda asked Lord Chaitanya about the Vedanta Sutras and why there were so many interpretations.
Prakashananda Saraswati ने चेतना से पूछा कि वेदांत सूत्र के बारे में इसमें क्यों अलग-अलग अर्थवाद बताए गए हैं.
But Lord Chaitanya explained, "There's only one true." commentary of the Vedanta
Sutra.
And that is the commentary that was written by the author himself,
Vyasadeva.
Which he wrote in the form of Srimad
Bhagavatam.
Vedanta Sutra takes the four Vedas, the 108 Upanishads and all the Puranas and condense them into codes.
और जो है वेदांत सूत्र में सारे जो उपनिषद और वेद हैं उनको सूत्र रूप में दिया गया है.
But those codes are practically impossible for any scholar to understand.
लेकिन वो सूत्र है जो किसी के समझना बहुत मुश्किल है.
Therefore the Lord Vyasadeva himself explained his own commentary of the codes in the form of the Srimad Bhagavatam which culminates in the beautiful, loving surrender of the devotees to Krishna, the
और
Supreme Personality of Godhead.
इसीलिए व्यास देव जी ने अपने स्वयं का जो टीका लिखी है जिसका अंत जो है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण में होता है.
And Prakashananda was glorifying the Lord's explanation of the essence of the Vedas, which falls in this verse. Harinama, 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 Eva Kevalam.
Kalona Steva, Nasteva, Nasteva, Gati
Ranyata. And then Lord Chaitanya led them all in chanting the holy names.
और वो यह हरे नाम के टीका कर रहे थे और बाद में चैतन्य महाप्रभु ने उन सबको नाम संकीर्तन में लगवाया.
He began to chant Hari Haraye Nama Krishna Yadavaya Nama Gopal Govinda Ram Sri Madhu Sudan.
वो इस तरह से ये दो लाइन का गान.
And everyone in Varanasi, hundreds, thousands, millions of people with their arms raised and tears of love in their eyes were chanting these holy names. Hari Haraye Namo Krishna Yadavaya Nama.
Hari Haraye Namo Krishna Yadavaya Nama.
Gopal Govinda Ram Sri Madhu Sudana.
Gopal Govinda Ram Sri Madhu Sudana.
Hari Haraye Namo Krishna Yadavaya Nama.
Hari Haraye Namo Krishna Yadavaya Nama.
Gopal Govinda Ram Sri Madhu Sudana.
Gopal Govinda Ram Sri Madhu Sudana.
Hari Haraye Namo Krishna Yadavaya Nama.
Hari Haraye Namo Krishna Yadavaya Nama.
Gopal Govinda Ram Sri Madhu Sudana.
Gopal Govinda Ram Sri Madhu Sudana.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Shri Gauranga Mahaprabhu ki. In this way, every resident of Varanasi, with their arms raised, were loudly crying out the holy names of Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
इस तरह वाराणसी के हर एक जो निवासी था, वो भगवान का नाम संकीर्तन जोर से करने.
And Lord Chaitanya was very pleased.
और चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए.
He explained, I came with these fruits of love of God and I had to give them freely here, but now everyone has tasted that fruit and have become mad in ecstatic love.
मैं भगवान के प्रेम के फल ले आया था और जो है मैंने अब सब जोर स्वीकार कर लिया है और भगवत प्रेम में विहल हो गए, पागल हो गए.
And he explained that now Kashi has become none different than Navadvip, where everyone is chanting Krishna's name.
अभी जो काशी है वो नवद्वीप जैसे ही बन गया जहाँ पर सब लोग भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हैं.
So Lord Chaitanya, along with his intimate associates, Tapan Mishra, Chandrasekhar, the Maharashtrian Brahmin, and Paramananda, who was also there, along with Srila Sanatan Goswami, they all, to the fulfillment of their hearts, desires, saw everyone chanting the holy names in love of Krishna.
चैतन्य महाप्रभु और उनके सब जो पार्षद थे उन्होंने देखा कि सब हृदय से जो है भगवान का नाम संकीर्तन गा रहे थे.
And then he decided to leave Kashi.
और फिर उन्होंने सोचा कि अभी मैं काशी छोड़कर आगे जाऊं.
To return to Jagannath Puri.
वापस जगन्नाथ पुरी लौट आऊंगा.
And Tapan Mishra and Chandrasekhar, along with Tapan Mishra's son Raghunath Bhatta, they were all weeping and crying in separation from the Lord.
तपन मिश्र चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्र के पुत्र जो कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे वो सब जो है प्रेम से रोने लग गए.
रघुनाथ भट्ट later became Raghunath Bhatta Goswami.
Raghunath Bhatta bhi baad mein Raghunath Bhatta Goswami ke naam se jane gaye.
One of the chief teachers of Lord Chaitanya's philosophy.
Chaitanya Mahaprabhu ke darshan ko sikhane wale mein pramukh jo hai.
At this time he was a young boy and he would massage the Lord's legs each night.
Us samay wo chote balak the aur Chaitanya Mahaprabhu ke charno ka massage karte the.
As the Lord was leaving they were weeping in separation.
Jaise Bhagwan ja rahe the to wo prem ke mare ro rahe the virah se.
And then Lord Chaitanya ordered Sanatan Goswami to go to Vrindavan to join Rupa Goswami and perform his great mission of revealing Vrindavan and the sentiments of Vrindavan to the world.
Phir Chaitanya Prabhu ne Sanatan Goswami se aagya di ki aap Vrindavan jaiye aur duniya ko ye Vrindavan ka darshan karwaiye.
And then Lord Chaitanya Mahaprabhu proceeded from Kashi again through the Jharikhanda forest to return to Sri Jagannath Puri.
Aur Chaitanya Mahaprabhu phir Kashi se Jharikhand jungle hote hue wapas Jagannath Puri laut aaye.
So we are so very happy to be here to worship this holy abode.
Hamare itna hum jo hai bahut prasanna hai is pavitra dham mein aane ke karan,
which is eternally blessed by the divine remembrance of such great personalities and avatars of the Lord that perform their pastimes here.
Aur jisme jo hai aise mahan ke mahan avataron ne yahan par sundar leela ki hai.
And I would like to ask anyone if they have any questions.
Kisi ko koi prashna ya shanka ho to kripya puch sakte hain.
Is there any questions? Like to add anything?
I'd like to ask a question. You said that Kashi was completely overwhelmed with chanting of the holy name.
Yes.
And now it seems that that is not the case anymore. So what happened?
What happened? What happened? कि ये बता रहे हैं कि काशी भगवान के नाम से बिल्कुल लीन हो गया था लेकिन अभी फिर से यहाँ कोई भगवान का नाम नहीं लेता अभी क्या हो गया?
As the centuries passed along through the influence of the age of Kali, like everywhere, people became engrossed again in materialistic activities.
जैसे समय बीता गया हर जगह की तरह लोग जो भौतिक कार्यों में कलयुग के प्रभाव से भौतिक कार्यों में लग गए.
Even in Vrindavan we find like this.
Hum Vrindavan mein bhi aisa dekhte.
This is the nature of this age of Kali.
Ye Kaliyug ka swabhav hai.
That as time passes people become very materialistic.
Jaise samay bitta jata hai log bhautikvadi ban jate hain.
They forget the goal of life.
Wo jeevan ka uddeshya bhool jate hain.
But Lord Chaitanya himself came to remind us. And similarly his representatives also come to remind us.
Chaitanya Mahaprabhu khud hi hame yaad dilane aate hain aur unke pratinidhi bhi hame is tarah yaad dilane ke liye aate hain.
That we all have access to this great treasure of the yuga dharma.
Hum sabko yuga dharma ki sampatti prapt karne ka tarika prapt hai.
Devotion to Krishna and chanting of his holy name.
Krishna ke prati bhakti aur unka naam sankirtan.
Does that answer your question?
Aur kisi ko koi prashna hai?
More or less after this question, it would have been quite possible for someone to have thought of commemorating Chaitanya Mahaprabhu's visit to Benares. And perhaps nowadays ISKCON prints books because there is a printing technology readily available. But at least in those days they could have built up a memorial or a temple for commemorating the visit of Lord Chaitanya. But without anything remarkable, maybe there may be some trace of his visit. Someone might say visited here, someone might
Well,
say.
Actually, he would regularly visit Kashi Vishwanath, Vishveshwara. He would regularly visit Bindu Madhava Mandir. And these were very, very great memorials of his visit.
यहाँ पर इनका प्रश्न ये था कि चेतना प्रभु जब यहाँ आए कोई स्मारक नहीं है तो बता रहे हैं कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर और साथ में जो बिंदु माधव का मंदिर है वो नियम पूर्वक दर्शन के लिए आते थे
But Aurangzeb, the great Mughal conqueror, destroyed all of these monuments completely.
लेकिन औरंगजेब ने जो है इन सब जो बड़े-बड़े मंदिर था उनका नाश कर दिया.
Temples can be destroyed, but bhakti in the heart can never be destroyed.
मंदिर का तो नाश हो सकता है लेकिन जो हृदय में भक्ति होती है उसका नाश नहीं किया जा सकता.
And even though the Vishwanath temple was destroyed by the devotion of the devotees, Vishwanath appeared again.
हालांकि जो विश्वनाथ मंदिर का नाश हो गया था लेकिन भक्ति के द्वारा जो है विश्वनाथ फिर प्रकट हो गए.
And similarly, although Bindu Madhava's temple was destroyed because of the great bhakti of those devotees, later on Bindu Madhava also revealed himself again from the river Ganges.
उसी तरह से जो है बिंदु माधव भी जो है वो भक्ति तो उनका नाश नहीं वाला कि मंदिर का नाश हो गया था फिर से वो गंगा जी से फिर प्रकट हो गए.
And similarly, although people have become very materialistic in many ways and forgetful of their prime aim in life, through Srila Prabhupada's books and through the influence of his great mercy, that dormant desire to become perfect by chanting the holy names can also awaken in our hearts.
उधर से हालांकि लोग इतने भौतिकवादी हो गए हैं फिर भी प्रभुपाद जी की किताबें और उनके जो संदेश के द्वारा लोग फिर से जो है कृष्ण भावना में लग रहे हैं.
So now we would like to invite everyone to relive this great pastime of Lord Chaitanya.
अभी हम चाहेंगे कि जो चैतन्य रूप लीला है उसका हम फिर से पुनर्जीवन करें इस तरह से.
And everyone here in Kashi present in the room to chant and dance.
जो हर एक व्यक्ति जो इस कमरे में है जो काशी के निवासी हैं सब लोग अभी कीर्तन करेंगे और डांस नृत्य करेंगे.
Shri Kardamaji will explain how to do like this.
मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे वो करना.